तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय मोहन भाई जी, जिनके जीवन में बाप दादा का, बाबा का, साकार बाबा का अनुभव, बहुत सी बातें आज वो हमें अनुभव से बताएंगे। बहुत सुंदर बात तो मैं आपसे ये बतलाना चाहती हूँ आपके बारे में कि लगभग 1962 में आप ज्ञान में आए और अपनी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट की थी, तो बाबा के कहने से आपने इंजीनियरिंग की आगे पढ़ाई की। और सबसे सुंदर बात, वही उस छोटी यंग एज में आपको सेवा स्थान खोलने का एक भाग्य मिला, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस जगह धनबाद वगैरह में सेवा स्थान नहीं थे। ये पुण्य आपके हाथों में गया कि आपने उस यंग एज में अनेकों के कल्याण हेतु सेंटर्स खोले धनबाद में, फिर उसके बाद पोस्टिंग असम में आई तो वहां सेंटर खोला। इस तरह से जगह जगह आपकी पोस्टिंग और आप सेवा स्थान खोलते रहे, देहरादून असम, देहरादून, फिर बढ़ते बढ़ते गुजरात आपके पहुंचे और गुजरात में सरला दीदी के साथ साथ आपको सौभाग्य मिला अनेक सेवा स्थानों को खोलने का। तो बहुत जीवन में गहरे अनुभव हैं आपके, कैसे बाबा की सेवा को आगे बढ़ाए जाए। आपने ONGC में सेवारत रहे और 1996 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद अकेडमी में यहां ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं देने लगे और आज साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग आप संभालते हैं। मैं तो इतना सा कहूंगी, बहुत मीठे स्वरूप से, बहुत प्यार से आप बात करते करते सबको अपना बना लेते हैं और तभी ये भाग्य मिला अनेक सेवा स्थान खोलने का और आगे बढ़ने और बढ़ाने का। तो अब हम आज आपसे साकार बाबा के साथ के अनुभव सुनेंगे।
ओम शांति। जब साकार बाप की बात हो रही हैं तो सबसे पहले हम सब इस रीति से ओम शांति का उच्चारण करेंगे। जैसे हम सब ने सुना है कि साकार ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण वत्स सब मिल करके, उस समय तो शांति नहीं होता था, ओम शब्द ही होता था, लेकिन बाद में ओम शांति वर्ड आया, उस रीति से हम सब उच्चारण करेंगे। पहले गहरी श्वास अंदर में लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा श्वास गहरा लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। ओ शांति की ही यह ध्वनि है जिसके अंदर पूरा यज्ञ के आदि से लेकर के अंत तक का सारा इतिहास जैसे समाया हुआ है। जैसा बहन जी आपको बता रहे थे इतने साल का 50 से अधिक वर्षों का अनुभव तो बहुत होगा, लेकिन यहाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ही उल्लेख करना चाहूँगा जो हम सब के जीवन से लगती हैं और जो हम सब का भी लक्ष्य है जीवन में हासिल करने का। तो बाबा से के ज्ञान में 62 में पहली बार जब आए और बाबा से मिलना हुआ, लखनऊ में हम पढ़ाई करते थे और कानपुर में बाबा आए थे और ज्ञान में आए हुए कुछ समय ही हुआ था, तो सब लखनऊ वालों ने निश्चित किया कि कानपुर में बाबा से मिलने जाएंगे और सब एक दिन फिक्स करके बस के द्वारा कानपुर पहुंचे। सुबह का समय था तो बाबा की क्लास पूरी हो गई थी और बस बाबा ने देखा और सब बच्चे वन बाय वन मिले। उस समय तो हमारी आयु मात्र 17 वर्ष की थी और वहाँ पर बाबा से मिले तो बाबा ने दृष्टि दी और पहला लाइन बोली, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था, हमें तो थोड़ा ही समय हुआ था, बस लेट हो गई थी तो हमने कहा हाँ बाबा थोड़ा बस लेट हो गई आने में, हम सब लोग लेट आए। तो बाबा ने कहा अच्छा, बड़ी रहस्यमयी मुस्कान से, अच्छा बस लेट हो गई, लेकिन बाबा तो तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो बाबा के तो हर बात में ज्ञान समाया हुआ होता है। तो फिर बाबा ने कहा, उसका अर्थ बताया, देखो बच्चे, बाबा से बच्चे बिछड़े हुए हैं कल्प पहले के 5000 वर्ष के, इतने समय के बाद बाबा मिल रहा है। तो उस रीति से वो बाबा का भाव था। फिर बाबा से मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है, तो हमारा लौकिक में नाम एक्चुअली श्री है, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण होता है ना, तो श्री फर्स्ट नेम है। तो बाबा को बताया, फिर बाबा ने कहा क्या बच्चे क्या बोला, तो हमने बताया थोड़ा और लाउडली कि श्री नाम है। तो बाबा ने कहा श्री, अच्छा। तो बाबा तो बड़े जॉली स्वभाव के भी थे, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, यही तो बाबा की सबसे बड़ी खूबी थी कि युवाओं के साथ युवान जैसा, वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा, बच्चों के साथ बच्चे जैसा। तो बाबा ने कहा आओ 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 गंगे दादी, क्यों कानपुर में गंगे दादी थे, बड़ी दादी वगैरह साथ में, आओ आओ कुमार का, आओ आओ गंगे दादी गंगे। देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी महान है, ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन बाबा का जॉली स्वभाव और यंग के साथ यंग जैसा, तो फिर बाबा ने बताया देखो बच्चे, अभी तो श्री जैसा कोई हो नहीं सकता। श्री किसके आगे लगाते हैं? देवी देवताओं के आगे, जिनका आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अब इस दुनिया में शरीर भी किसी का पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि विकार की उत्पत्ति है और आत्मा तो इतने अनेक अनेक जन्म लेते लेते अपवित्र बनी गई है, इसलिए दोनों ही अपवित्र हैं, आत्मा भी और शरीर भी। इसने अभी तो श्री, देखो ये ब्रह्मा है ना, ये भी अपने आगे श्री नहीं लगा सकता, तो तुम्हारा नाम श्री कैसे हो सकता है? ऐसे हंसी में जॉली मूड में बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा अभी कहता है कि तुम्हें बाबा नाम मतलब मोहन देता है और श्री जैसा बनना है। अभी श्री नहीं है, लेकिन नाम मोहन और श्री जैसा बनना, यानी कि अपनी आत्मा को भी पवित्र बनाना है और शरीर को भी पवित्र। तो तब से मोहन नाम से अपने ज्ञान में जाने जाने लगे। और बाबा का भाव यह होता था कि कोई भी बच्चा आए, उसे अपने इस जन्म की पुरानी स्मृति न रहे। भाई पुराना ये है, ये कोई भी बात, हमारा नया जन्म हुआ है, भले शरीर वही है, उस शरीर में नया जन्म हुआ है, लेकिन नए माता पिता, नया परिवार, नया हर चीज, नई स्मृति रहे, पुरानी बात भूल जाए। तो मुख्य लक्ष्य बाबा का ये रहता था। इसीलिए बाबा कई बार तो किन्हीं के नाम बदल देता था, कई बार नाम बदलने की बात नहीं होती थी, वही नाम ही चलते थे, और ज्यादातर करके कई बार ऐसा नाम होता था जो ज्ञान के अनुरूप नहीं होता था, जैसे किसी का नाम माया देवी है मानो, तो बाबा कहता था माया का क्या काम बच्ची, बाबा तुम्हारा नाम, अब कोई भी गीता देवी या कोई भी ज्ञान युक्त नाम कर देता था। तो मुख्य बात यही है, तो अपने को सदा यही समझे कि मेरा नया जन्म हुआ है और पुराने संबंधी पुराने जन्म उनकी विस्मृति हो जाए। एक बात तो बाबा की सदा ये रहती थी, और बाबा कभी भी छोटे को छोटा नहीं, बाबा हरेक को उसका अंतिम स्वरूप में देखता था, कर्मातीत स्थिति के रूप में देखता था। इसीलिए शरीर की आयु छोटी भी होती थी तो भी बाबा बड़े की तरह जैसे बिहेवियर करके उनको यज्ञ के और निकट लाता था। तो बाबा जब हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो हमने बाबा को कहा, बाबा वहां इंजीनियरिंग कॉलेज धनबाद में जाना है पढ़ने के लिए, आईआईटी धनबाद, तो वहां पर कैसे होगा, वहां तो सेंटर है नहीं और भोजन अपवित्र खाना पड़ेगा अशुद्ध। तो बाबा ने कहा, देखो कितना हल्का, अरे बच्चे ये कौन सी बड़ी बात है, जब हम दृष्टि से सृष्टि को पवित्र कर लेते हैं तो क्या भोजन को पवित्र नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो बाबा ने ये बल भरा कि ये जो अशुद्ध भोजन जब तक करना है थोड़ा समय, तब तक हॉस्टल में खाओ, लेकिन साथ ही बाबा ने इतना बल भरा, जब आते थे वहां पर पढ़ने के लिए आए तो हर हफ्ते ही 10 दिन में बाबा का पत्र आ जाता था, बच्चे वहां से मकान देखो, सेंटर खोलना है। अब फर्स्ट ईयर 4 साल का कोर्स और ज्ञान की कोई वो नहीं वहां पर आधार, लेकिन बाबा ऐसा बल भरता था, बाबा को मालूम होता था, और बस वहां पर इस रीति से पुरुषार्थ किया। और पास में एक सिंदरी सेंटर होता था, वहां पर एक युगल रहते थे, तो अविनाश भाई और सुषमा बहन करके, तो उनके सहयोग से फर्स्ट ईयर में ही सेंटर भी खुल गया। उसके बाद 3 वर्ष तक वहाँ सेंटर पर ही भोजन वगैरह भी किया, शुद्ध भी हो गया। लेकिन बात क्या है कहने की, कि बाबा जो है ना, एक तरफ तो आगे आगे बढ़ने के लिए बल भरता था बाबा, अगर ये देखता कि ये तो भाई स्टूडेंट है, इनकी अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये न ज्ञान का अनुभव है नए नए, तो ये ऐसा बाबा नहीं देखता था। बाबा हर चीज का अंत देखता था, कर्मातीत। तो ऐसे ये हम बच्चों के लिए भी इशारा है, कोई भी अगर नया स्टूडेंट होता है, कम ज्ञान का अनुभवी हो, तो भी हम उसको अंतिम स्वरूप में देखें, किस प्रकार से ये आत्मा कर्मातीत होके अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करेगी। तो बाबा ने कभी भी किसी को साधारण रूप में नहीं देखा, छोटे से छोटा भी होता था बाबा यही देखता था, ये मेरा होनहार बच्चे हैं और इनके द्वारा बहुत बहुत सेवा होनी है। इस प्रकार से वहां पर वो सेवा होती रही, और वहीं पर ही हमारे एक साथी विनोद जैन, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, तो वो भी वहीं पर पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर में आए हुए थे, और बहुत ही कम पुरुषार्थ से वो भी वहां पर ज्ञान में चलने लगे हैं। अभी अभी शांतिवन में है, अमेरिका में, वो यहाँ से वहां से पढ़ाई करके और कुछ वर्ष यहाँ सेवा करके फिर वहां चले गए अमेरिका में। वहां लगभग 30 वर्ष तक वो उन्होंने सेवा की, और अभी वर्तमान समय शांतिवन में जो ट्रॉमा सेंटर है उनमें अपनी मतलब मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। तो एक तो ये बाबा की एक एक बात से हम एक एक चीज ग्रहण करते जाए। अनुभव केवल सुनने का नहीं होता है, तो जिनके भी हम निमित्त बनते हैं जो भी, क्योंकि उनके लिए तो हम ही ब्रह्मा बाबा हैं, जिनको भी हम ज्ञान देते हैं, जिनकी भी सेवा करते हैं, तो उनके अंदर हम उनका वो स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप देखें कि ये आत्मा ज्ञान में है, तो बाबा को इसके द्वारा बहुत कार्य कराने हैं। वो चाहे कैसी भी हो आत्मा, वर्तमान समय तो कमजोर आत्मा ही अधिकतर आएंगी, बाबा ने बताया, लेकिन बाबा ने ये भी बताया है कमजोर, अति कमजोर आत्माएं होंगी, उनको चलने के लिए पैर भी तुम्हें देने हैं, उनको तुम्हें देखने के लिए नैन भी देने पड़ेंगे। इस प्रकार से एक तो हमें ये करना है कि हर आत्मा को हम उसकी संपूर्ण स्वरूप में देखते चले। तो वहां पर 4 साल पढ़ाई आदि करी, उसके बाद फिर हमारी पहली पोस्टिंग आसाम में हुई इंजीनियरिंग। तो हमने बाबा को कहा, बाबा 67 की बात है, उस समय पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी सेंटर नहीं था, तो बाबा को कहा कि बाबा वहां तो कोई भी सेंटर नहीं है और कैसे हम वहां जाकर करेंगे, इसीलिए हमारे पास 2-3 और जॉब इंजीनियरिंग के बाद मिले तो हम वहां जाते हैं। एक पूना में था, एक दिल्ली में था मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे तुम्हें ये जॉब लेना है आसाम में, वहां कोई सेंटर नहीं है और इसीलिए ही बाबा तुम्हें भेज रहा है कि तुम्हें वहां जाकर के बहुतों का कल्याण करना है, बहुत आत्माएं मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बहुत भोले भाले बच्चे हैं, बस इंतजार निमित्त उन्हें कुछ कोई भी ज्ञान का जरा सा बस थोड़ा सुनाना है और वो आत्माएं जैसे तैयार बैठे। ऐसे बाबा हरेक में बल भरा करता था, भले कुछ सेवा का अनुभव, उस समय तो नई नई प्रदर्शनी निकली थी, सेवा के भी उतने अनुभव नहीं होते थे, लेकिन बाबा एक एक बच्चे में बहुत बल भर के उसे वास्तव में बलशाली बना देता था। तो वहां जाना हुआ और जैसे ही बाबा ने कहा था, बस निमित्त वहां मंदिर में जाके सेवा करते थे, बाबा का हर हफ्ते पत्र आ जाता था, बच्चे वहां लेक के किनारे जाके सेवा करो, वहां रोटरी में जाके भाषण करो, ऐसे ऐसे करके मंदिर में जाओ। तो जहां जहां जाते थे निमित्त काम बाबा का होता था, निमित्त बोलना हमारा मुख के द्वारा होता था, लेकिन बाबा जैसे सेवा करा देता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ऐसे सेवा हुई और वहां पर चूंकि बाबा ये भी कहता है कि अगर बच्चा, बाबा देखता है बच्चा उतना अनुभवी नहीं है और समझने वाले बहुत अच्छे हैं, तो बाबा क्या करता है, बाबा उनमें प्रवेश करके भी ज्ञान सुना देता है। ऐसा भी हमें कई बार अनुभव हुआ, जैसे बाबा खुद ज्ञान सुना रहा है और हम में तो उतनी क्षमता है नहीं। तो ये कई बार अनुभव किया। और हरेक कोई भी सेवा हो, बस बाबा को अर्पण करके, बाबा ये रथ हाजिर है, आपको ये सेवा करानी है, ये प्रदर्शनी समझानी है, ये इतना बड़ा स्टेज है, ये भाषण करना है, और फिर बाबा किस प्रकार से वो सेवा करता है ये बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तो ये वहां से हमने ये अनुभव करना सीखा। तो आसाम में बहुत ही कम समय में वहां पर सेंटर खुल गया, मारवाड़ी माताएं ज्यादा आती थीं और बस बाबा को पत्र लिखते थे, और चूंकि हमें भी सेवा का ज्यादा अनुभव नहीं था, कुछ भी नहीं, तो बाबा ने क्या युक्ति रची कि बस वो माताएं आती थीं, हम ज्ञान सुनाते थे थोड़ा, वो ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार अधिकतर करते थे। तो उस रीति से बहुत चारों तरफ बाबा का यह हो गया कि भाई ये वहां पर तो भगवान का ध्यान साक्षात्कार होता है, दीदार होता है। तो उस जगह शिव सागर आसाम में जगह थी तिनसुखिया के पास, तो वहां बहुत ज्यादा एकदम सेवा होने लगी इस तरीके से। तो बाबा को मालूम है बाबा को क्या सर्विस करानी है, हमें बस अपने को ऑफर करना होता है। इस प्रकार से वहां सेवा होती रही। तो अनुभव तो इस बीच के बहुत हैं, लेकिन वो कट शॉर्ट करके मैं एक मेन अनुभव सुनाना चाहता हूँ, खास करके कि जब आसाम में ही थे तो वहां पर मैं चूंकि देहरादून से गया था, वहां पर ONGC में जॉब ज्वाइन करके, तो वहां पर बहन जी का पत्र आया कि भाई यहाँ पर म्यूजियम बनाना है, आप कुछ छुट्टी लेकर के आ जाओ। तो हमने बाबा को लिखा, ये है 68 की बात, कि बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ऐसे वहां पर बहन जी बुला रहे, हम छुट्टी लेकर के जा रहे हैं उधर। तो बाबा ने पत्र आया और संदेश दिया, संदेशी की एक छोटी बच्ची थी उसके द्वारा संदेश बाबा अक्सर करके, हर गुरुवार को तो भोग लगाते ही थे, लेकिन उसके अलावा भी समय प्रति समय बाबा सेवा के संदेश देता रहता था। तो बाबा ने संदेश दिया कि हाँ बच्चे वहां जाओ म्यूजियम का, लेकिन पहले मधुबन आओ और प्लेन से तुरंत आओ। तो बाबा का आदेश था तो हम बस तुरंत ही टिकट करके, फर्स्ट टाइम ही 69 जनवरी की बात है, प्लेन से मधुबन, पहले वहां से कलकत्ता आए, दिल्ली आए और दिल्ली से फिर मधुबन के लिए आ गए। और लौकिक हमारे पिताजी भी हमें मिल गए दिल्ली में, और इस रीति से हम दोनों ही 17 जनवरी 1969 को यहाँ पहुंच गए, मतलब बाबा के अव्यक्त होने से 2 दिन पहले। और उन 2 दिनों में बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का मौका मिला। उसी को मैं थोड़ा शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम सभी का भी लक्ष्य है ऐसा कर्मातीत बनना, फरिश्ता बनना, जिससे कि हम सब भी अपनी मंजिल को पा सकें। तो यहाँ पर आके देखा बाबा से, उससे पहले तो कई बार मिले थे, 15-20 बार मिले होंगे, क्योंकि पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, जब भी छोटा परिवार था जब भी आवश्यकता होती थी मधुबन आ जाओ, तो इसलिए 62 से 69 तक कई बार मिले होंगे, लेकिन इस बार का मिलना बहुत ही अनोखा था क्योंकि बाबा तो अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। तो अंतर क्या देख रहा हमने, पहले जब भी बाबा से मिलते थे तो बाबा को ने टाइम दिया हुआ होता था, बाबा के पास जाते थे मिलते थे, तो बाबा पूछा करते थे क्या हाल है, कैसी सर्विस है, सब बताते थे। और बाबा फिर कोई प्रश्न होता था उसका उत्तर भी देते थे। लेकिन इन 2 दिनों में बाबा के पास सम्मुख गए तो जब भी बाबा के पास जाते थे बाबा दृष्टि देते, जैसे दृष्टि दी, और दृष्टि देके बाबा अंदर का हाल भी जान लेते थे। और बाबा कहते थे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। 17-18 जनवरी को लगभग 6 बार बाबा से मिलना हुआ, लेकिन अलग अलग प्रश्न के लिए जाते थे, कभी अपनी अवस्था के लिए, कभी सेवा के लिए, कभी और आगे की प्लानिंग के लिए, आदि आदि। लेकिन बस मन में जो होता था, बाबा ऐसे दृष्टि दी अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, तो ये स्थिति है मन जीते जगत जीत की। जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है तो उसने चूंकि अपने मन के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय पाली होती है, तो दूसरे के मन के संकल्प को वो सहज ही पढ़ सकती है आत्मा। और केवल मन के संकल्पों को पढ़ ही नहीं सकती, बल्कि उसका समाधान भी साथ साथ कर देती है अगर कोई प्रश्न होता है। तो ये मन जीते जगत जीत की स्थिति बाबा की हमने उन अंतिम 2 दिनों में एक तो कई 5-6 बार अनुभव करी। ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ये वो ही कर सकता है जिसने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त की होगी। दूसरी बात बाबा का क्या देखा कि धीरे धीरे बाबा समेटते जा रहे थे, जो बाबा कहते हैं, अब हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं, बच्चे अंत मते सो गति होती है, ये गायन है। तो अब धीरे धीरे सब तरफ से समेटते जाओ, क्योंकि जहां समेटा हुआ नहीं होगा तो अंत में वो ही याद आएगा, और जब वो याद आएगा तो वहीं पर ही जन्म हो जाएगा, वहीं पर ही हिसाब किताब सारे चुकतू करने के लिए फिर नया जन्म लेना पड़ेगा आदि आदि। तो इसलिए अंत मते सो गति आपकी बहुत उत्तम हो, कोई भी याद न रहे तो अभी से ही सब तरफ से समेट दे जाओ। और बाबा का खुद देखा हमने, बाबा धीरे 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 सब समेटते जा रहे थे। 62-63 में बाबा के साथ साथ घूमने जाते थे, गेम खेला करते थे इधर, और बिल्कुल बाबा इस तरीके से हिल मिल जाते थे हर एक के साथ, युवा के साथ युवा जैसे, और जैसा व्यक्ति होता था उस अनुरूप। लेकिन धीरे धीरे बाबा बहुत अंतर्मुखी, गंभीर, एकांत प्रिय और ज्यादा होते जा रहे थे। बस काम से काम बाबा के पास जाते थे, बच्चे हाँ बच्चे कैसे आना हुआ, कोई भी बात होती थी करा, एक दो मिनट में ही बात पूरी हुई और बाबा फिर देह से न्यारा हो जाता था। तो एक बाबा का ये देखा कि जब चाहे बाबा देह में आए और जब चाहे देह से न्यारा हो जाते थे। ये प्रैक्टिस की बहुत बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि अंत समय में ना, जब ये शरीर के सारे बहुत हिसाब किताब होंगे, क्योंकि अंतिम जो पेपर होगा हमारा, बाबा ने कहा अंतिम दो मुख्य पेपर होंगे, एक तो देह का पेपर, जितने भी बचे हुए हिसाब किताब होंगे बीमारी के, कर्म भोग के, किसी न किसी रूप में इस देह के द्वारा ही चुकतू करने होंगे, क्योंकि यही आत्मा का सबसे निकट का साथी है। और दूसरा एक परिवार का पेपर, क्योंकि हमारा परिवार तो यही है, बाहर वाले तो उनसे तो संबंध संपर्क जैसे बहुत कम हो ही गया। तो इस कारण से ये इसके लिए ये अभ्यास जरूरी है कि देह के जो पेपर हो वो हमें अपनी ओर न खींचे। देह में दर्द हो, कष्ट हो, ऐसा कभी भी संकल्प ना आए कि ये देह छूटे, और वो दर्द अपनी तरफ बहुत दर्द हो लेकिन उसकी अनुभूति ना हो। दर्द जैसे क्लोरोफॉर्म देते हैं या एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो वो सब होता है लेकिन उससे न्यारे हो जाते हैं देह से। तो मैं बता रहा था बाबा अक्सर करके या तो झोपड़ी में मिलते थे या अपने कमरे में या हिस्ट्री हॉल में, लेकिन जो टाइम होता था ब्राह्मणी जाती थी पार्टी लेके, तो बस बाबा जैसे अपने में खोया हुआ है। बाबा बाबा तो कई बार बाबा को जैसे जर्क सा लगता था, कोई ध्यान में नहीं होते थे, आंख बंद नहीं होती थी, लेकिन जैसे देह से न्यारे अशरीरी स्थिति, और फिर हाँ बच्ची आओ तो बाबा पार्टी लेके आए हूँ, हाँ 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 बैठाओ, फिर बाबा पार्टी से मिलते थे और जैसी पार्टी गई फिर बाबा देह से न्यारे हो जाते थे। तो एक ये आवश्यकता है अभी कि हम भी जब कोई पार्ट प्ले करना है, सेवा करनी है, तो बस देह में आए, पार्ट प्ले करें और फिर देह से जैसे न्यारे हो जाए और फिर अशरीरी हो जाए। एक बाबा ने ये लेसन अंत तक भी हम बच्चों को सिखाया। 18 जनवरी के दिन उस दिन क्लास का बताते हैं, अमृत मॉर्निंग क्लास में बाबा आए, लेकिन उस दिन मुरली नहीं चलाई, उस दिन बाबा ने योग कराया सिर्फ, और बाबा याद प्यार देके चले गए। यीशु दादी को बोला आज जितना पत्र लिखाना हो पत्र लिखा लो, और कोई भी पत्र न रह जाए बिना जवाब दिए हुए। क्यों? क्योंकि बाबा को आभास हो गया था कि आज बस मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। जितनी एक्टिविटी उस दिन बाबा ने की, एक तो ये बोला पत्र लिखा लो, अगर बाबा ये कोई पत्र अनआंसर्ड रह जाते बिना जवाब दिए तो उन बच्चों के संकल्प चलते, देखो हमने पत्र लिखा बाबा का जवाब नहीं आया। तो इसीलिए बाबा ने ये करा। और फिर जो नक्की लेक का म्यूजियम है, वो बिल्डिंग कई दिन से चल रहा था लेनी है लेकिन पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसी दिन बाबा ने उस पर साइन करा फाइल पर, कि अच्छा उस बिल्डिंग को ले लो, वो सेवा के काम में आएगी। तो वो पेंडिंग रहा, नहीं रहा, काम पूरा हो गया। रोज क्लास रात को 8:30-9 होती है, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही बोला कि भाई बच्चे आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और बाबा सबको ये बता दो सब भोजन करके क्लास में आ जाए 7 बजे। ये खास इंस्ट्रक्शन थी भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को आभास हो गया था कि बस आज बच्चों के साथ ये अंतिम ही क्लास है। और उसके बाद बाबा क्लास में आए, बाबा ने मुरली चलाई। वैसे बाबा को उम्र और समय, वेदर ठंडी का दिन था, जनवरी का, खांसी भी कुछ आती थी, टाइम टू टाइम गला साफ करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन उस दिन, उस 18 जनवरी की रात्रि क्लास में न बाबा को एक बार भी गला साफ करने की जरूरत पड़ी और न कोई ऐसा जो इस बात का प्रतीक है कि जो कर्म भोग होते हैं शरीर के, उसके ऊपर योग बल अंतिम समय तक विजय प्राप्त कर लेता है। तो एक बार भी बाबा को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी और इस रीति से बाबा ने पूरी की पूरी क्लास कराई। हम बाबा के सम्मुख बैठे हुए थे, हमारा सौभाग्य था। तो हमारे मन में बैठे बैठे एक संकल्प आया। क्या संकल्प आया? कि बाबा कुछ मेरे लिए बोले। अभी भी मधुबन जाते हैं ना, जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं, दिल होती है ना बाबा हमें भी स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा से नैन मुलाकात हो जाए। तो ऐसे ही हम तब तो साकार में सामने थे, तो जैसे ही मन में संकल्प आया, अब बाबा की तो कर्मातीत अवस्था, तो जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना, भक्त भगवान, भगवान जो है भक्त की इच्छा को जान करके उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन में संकल्प आया, बाबा तक पहुंचा होगा, तो बाबा ने तुरंत ही हमारा नाम लेकर के कुछ महावाक्य उच्चार दिए, वो हमारे जीवन के लिए जैसे हमेशा के लिए भी गाइडिंग लाइन बन गए। अभी तक भी वो जैसे 18 जनवरी की अंतिम साकार मुरली यहाँ भी ओम शांति भवन के नीचे वहां पर कैसे डिपार्टमेंट से मिल जाती है, और कैसे बाबा जो भी हम बच्चों की इच्छा होती है कैसे बाबा उन सब इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो एक ये उस दिन अनुभव किया। उसके बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चला रहे थे, तभी ये तो हॉल था नहीं, तो बाबा बस कह के अच्छा बाबा बच्चों को मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट कह के बाबा बाहर आए। और बस देखते सब बच्चों को फिर बाद में 3 शब्द तो वो बोले ही, लेकिन मेन ये बोला अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। तो देखो ये बाबा ने पहले शब्द कभी भी नहीं बोले थे, उसी दिन बोले अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये कह के बाबा गए और बस अपने कमरे में जाके दादी उनके पीछे पीछे, दादी के हाथ में हाथ, दादी से नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली, शरीर छोड़ा। लेकिन ब्यूटी तो उसके बाद देखी कि बाबा शरीर छोड़ा, लेकिन शरीर वो 18 जनवरी की रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का अग्नि संस्कार किया गया। न कोई इंजेक्शन दिया गया बाबा को, न कोई केमिकल लोशन या कोई ऐसी दवाई लगाई गई, लेकिन शरीर में कोई दुर्गंध नहीं, न शरीर काला पड़ा, और काफी हद तक शरीर में जैसे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, नहीं तो शरीर एकदम अकड़ जाता है ना। हाँ अकड़न थी, फिर भी इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि बाबा को स्नान आदि भी करा के जब यहाँ अंतिम संस्कार किया गया शांति स्तंभ पर, तो बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ, कोई कालापन नहीं। ये प्रतीक है प्रकृति जीत का, क्योंकि 5 तत्वों का बना ये शरीर है, तो मन जीते जगत जीत तो है ही है, लेकिन जगत के अंदर तो ये प्रकृति भी आ जाती है, 5 तत्व भी आ जाते हैं। तो अभी बाबा हम बच्चों से भी ये चाहता है कि हम मन जीते जगत जीत तो बने, लेकिन प्रकृति जीत भी बने। क्योंकि ये प्रकृति ही हमारा पूरे 84 जन्मों में, ये शरीर तो इन 5 तत्वों का ही बना है, इसके द्वारा ही शरीर को पूरा का पूरा ये इस शरीर से ही तो कार्य करना है। तो इसीलिए ये कैसे बनेंगे प्रकृति जीत, तो उसके लिए बाबा ने खास कुछ बात बताई है। एक तो ये कि हम प्रतिदिन कुछ भी 5 मिनट भी प्रकृति के तत्वों को योगदान करें, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, कहीं पर भी ये हमारे नजरों में हो या इनको विजुअलाइज करके इनको योगदान करें। दूसरी बात कि इन तत्वों के अनुरूप जो है हम, ये तत्व हमारी मृत्यु का कारण न बने, क्योंकि अगर ये तत्व मृत्यु का कारण बन गए, मानो अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिरी और उसमें शरीर छूट गया, तो उस समय तो चारों तरफ त्राही त्राही हाय हाय मची हुई होगी, बाबा कहां से याद आएगा। तो इस कारण से क्या होना चाहिए कि ये तत्व को हम अपना मित्र जैसे बना लें और ये तत्व हमें अंत तक सहयोग दें। बाबा ने कहा मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं, लेकिन बस आवश्यकता क्या है, बाबा तो सिग्नल भेजता है लेकिन बच्चे उसे अपनी क्लीन और क्लियर बुद्धि से रिसीव करें, तो बच्चों के पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, तो वहां सेफ्टी होगी और ये तत्व फिर हमारी मृत्यु और दुख अशांति का कारण नहीं बनेंगे। तो क्या करें, इन तत्वों के साथ जैसे हम अपने संस्कारों को मिला दें। दोस्ती होती है, दो फ्रेंड में मित्रता होती है, जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं उनमें मित्रता होती है, तो ऐसे ही तत्वों के साथ हम अपने मित्रता कर लेंगे तो ये तत्व हमेशा हमारे सहयोगी बनेंगे। जैसे जानकी दादी को बाबा ने कहा है ना, एक बार जानकी दादी की तबीयत 1999 के बाद 2000 ईयर आ रहा था, बाबा आए हुए थे यहाँ मधुबन में, मधुबन माने नीचे, और दादी जानकी की तबीयत लोटस में बहुत खराब थी, डॉक्टरों ने जैसे जवाब दे दिया था, तो वहां से फोन भी आता था और यहाँ बाबा को बताया गया कि बाबा दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और तो बाबा ने कहा सुन के, नहीं बच्चे कोई बात नहीं, वो प्रकृति उस बच्ची का अंत तक साथ देगी। तो देखो उसके बाद अभी भी 18 साल हो गए और इतना बड़ी आयु का अभी तक अपने यज्ञ में कोई नहीं, फिर भी देखो किस प्रकार से प्रकृति साथ दे रही है। प्रकृति माने ये 5 तत्वों से बना शरीर, ऐसे ही हम सबका भी प्रकृति अंत तक साथ दे, उसके लिए ये आवश्यक है कि हम प्रकृति के गुणों को अपनाते रहे। मानो हमारा बाबा ने बताया है ना, अर्थक्वेक से अधिकतर विनाश होगा, तो जल का ये पृथ्वी का मुख्य गुण कौन सा है, कौन सा है, सहनशीलता, वो भी है और समाने का सबसे बड़ा गुण है पृथ्वी का दातापन का, पृथ्वी देती है, तो पृथ्वी देती है ऐसे ही उससे फल बीज बो दो 1000 बीज पैदा हो जाएंगे, इस तरीके से हम भी पृथ्वी की तरह दाता बने, हर एक को सहयोग सहनशीलता हमारे अंदर, ये जितने भी दातापन के गुण हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन ये गुण धारण करके जो भी आत्मा अंत समय हमारे सम्मुख आए हम उसको प्रेम स्नेह शक्ति इन सब का दान देते रहें, सहयोग देते चलें, तो यानी कि पृथ्वी की तरह हम दाता बन गए तो पृथ्वी कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। जितना बड़ा अर्थक्वेक आएगा, हमारे सामने तो कई उदाहरण और यज्ञ का सुना हुआ है, चाहे कछभुज का अर्थक्वेक का, चाहे लाटूर का उदाहरण, कैसे बाबा ने अंत समय में अपने बच्चों की रक्षा कर ली, तो वो तभी बाबा बंधा हुआ है। बाबा ने कहा जब बाबा सिग्नल दे बच्चे उसे पहचान करके बस ऑटोमेटिकली उनके पैर बढ़ेंगे। तो ऐसे ही अगर पृथ्वी के अर्थक्वेक से हम सेफ्टी चाहते हैं तो दातापन का अनेक गुण है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी एक गुण का ही वर्णन करता हूँ एक एक। ऐसे जल का, जल भी प्रलय का और मृत्यु का कारण बनेगा, बम्बई जैसे शहर और जो भी शहर भारत के या दूसरे जल के किनारे हैं वो तो जल में समाने वाले हैं, तो उससे रक्षा कैसे होगी? जल हमारी मृत्यु का कारण न बने, वो कब होगा? जब जल का हम एक विशेष गुण जो है उसे धारण करेंगे। कौन सा गुण? शीतलता के साथ फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट। देखो, जल को गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, यहां तक कि चम्मच में लो, थाली में लो, हर जगह सेट हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, एडजस्टमेंट की शक्ति है। ऐसी अगर हमारे अंदर भी एडजस्टमेंट की शक्ति हुई, फ्लेक्सिबिलिटी हुई, हर आत्मा के साथ हम अपने संस्कार मिलाकर चलने की शक्ति रखते होंगे, तो क्या होगा? चाहे जितनी भी सुनामी आएगी, फ्लड आएगा, कुछ भी क्लाउड बर्स्ट होगा, कुछ भी होगा, जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं, क्योंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया। हमने अगर उसका ये फ्लेक्सिबिलिटी का गुण धारण कर लिया, एडजस्टमेंट का, तो कभी भी जल हमारी दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। इस तरह जल के जो प्रकृति का ये जल तत्व है, इस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह वायु पर विजय प्राप्त करने का क्या कारण बनेगा? वायु में कौन सा विशेष गुण होता है? वायु हल्की होती है, हर चीज को वायु ऊपर उठाती है। देखो, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु ऊपर उठाती है। दोनों में रिवर्स गुण है, लेकिन को एग्जिस्टेंस है, दोनों साथ साथ रहते हैं। ऐसे ही बहुत आत्माओं के साथ हमारे संस्कारों की भिन्नता होगी, विपरीत गुण होंगे, लेकिन फिर भी हम को एग्जिस्टेंस, साथ साथ रहने की क्षमता को डेवलप करें, तो क्या होगा? ये कब होगा? जब वायु की तरह हम हल्के रहेंगे। हर परिस्थिति में कोई भी पेपर आए, परिस्थिति आए, कितना भी कड़ा पेपर हो, लेकिन हम भारी ना हो जाए उसमें, हल्के रहें। और उससे क्या होगा, अंत में जितने साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, बहुत कुछ विनाश का कारण बनेगा, लेकिन ये वायु हमारे श्वास लेने का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वायु की तरह हल्का रहने का गुण धारण कर लिया, तो वायु को हमने अपना मित्र बना लिया। और जब मित्र मित्र की कभी रक्षा, हमेशा रक्षा करता है, प्राण नहीं लेता, तो इस तरह वायु को बना लिया। ऐसे ही और कौन सा है? आकाश। आकाश में कौन सा विशेष गुण होता है? विशालता, महानता। देखो, जितनी भी महान आत्माएं होके गई है ना, हमने तो महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, मदर टेरेसा, हमने तो ब्रह्मा बाबा को भी देखा, बहुत बाबा के साथ रहे, कि इतनी महानता का गुण का विशेष लक्षण क्या है? क्षमा भाव। दूसरे ने आपके साथ जितना भी बुरा किया हो, गलत किया हो, लेकिन हम अपने अंदर न रखें। दादी को भी हमने देखा, कोई कितना भी कुछ बोल के जाए, लड़के जाए, दूसरे ही क्षण दादी उस बात को भूल जाती थी, दादी प्रकाशमणि। क्षमा भाव, भूल वो ही सकता है जिसके अंदर क्षमा की शक्ति होगी। तो इस तरीके से हमें अपने अंदर ये चेक करते रहना, किसी की कोई बात हमारे अंदर छुपती तो नहीं है, कचोटती तो नहीं है, इसने मेरे साथ ये किया, सूक्ष्म में भी बदला लेने की भावना ना आए। ये क्षमा भाव, ये ही एक सबसे बड़ा गुण है जो महान आत्माओं के पास होता है, और उसी के कारण वो महानता को प्राप्त कर लेती है। तो हमें ये देखना है, खास उन आत्माओं को हम सम्मुख लाए जो हमारे लिए बहुत निगेटिव रही हों, उनको लाए, देखें, उनके विजुअलाइज करके, मेरे मन में तो उस आत्मा के लिए कोई निगेटिविटी नहीं है, क्षमा भाव है, हे आत्मा, मैं आपको जो भी कुछ हुआ है उसके लिए क्षमा करती हूँ, और आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि आपके मन के अंदर अगर मेरे लिए कुछ है तो उस बात को भूल जाओ। तो ये वाइब्रेशन जितने हम स्प्रेड करेंगे, तो कोई भी आत्मा के अंदर हमारे लिए नेगेटिविटी या वैर की भावना नहीं रहेगी, और इस रीति से हम संपूर्ण बन जाएंगे। और पांचवा तत्व कौन सा है? अग्नि। अग्नि का स्वरूप प्रकृति में क्या है? सूर्य। तो देखो, अग्नि का ना विशेष गुण क्या होता है कि अग्नि में जो चीज डाली जाती है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, अंत समय आपका ऐसा स्वरूप हो, ज्वालामुखी अग्नि प्रज्वलित हो, जो किसी भी आत्मा का वो रूप बदल दे। अंत में आत्माएं आएंगी, रोती हुई आत्मा आए, उसका रूप बदल जाए, आपके सम्मुख आते ही वो हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख की अनुभूतियों में खो जाए और सुखी होके, हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत न पड़े, लेकिन हमारा ऐसा अग्नि स्वरूप हो कि उसको, उसकी रूप को हम बदल दें। और वो कब होगा? जब अग्नि का स्वरूप, जब ज्वालामुखी योग का हमारा अभ्यास होगा। ये तो एक अलग ही टॉपिक होता है, बहुत बड़ा, लेकिन ये पांच तत्वों को अगर हम अपना मित्र बना लेंगे तो क्या होगा, अंत मते सो गति होगी। और ये तत्व, ये प्रकृति जो हमारे पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक हमारी आत्मा की निकट की साथी है, भले अलग अलग नाम रूप में होंगे लेकिन तत्व तो यही होंगे ना, तो वो तत्व किस प्रकार से अंत तक हमारा साथ दें, वो हमें संपूर्ण बनाने में सहयोग करें, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी करा, प्रकृति जीत, अंत में तत्वों ने आभास दे दिया बाबा को, हाँ ये तुम्हारा अब अंतिम मिलन है बच्चों से, तो हिस्ट्री हॉल के बाहर आते आते बाबा ने कहा अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, सब पूरा बाबा संपूर्ण समेट करके निपटा के गए, जिससे अगर ये नहीं होता तो अंत समय शरीर छोड़ते समय वो अधूरा काम याद आ जाता जो बाबा ने पूरा नहीं किया। चार पांच काम ऐसे थे जो पूरे नहीं थे, तो बाबा ने अंतिम दिन भी वो पूरे कर लिए, जो संगम भवन का काम या पत्र लिखने का काम या जो क्लास का, रोज क्लास 10 बजे होती है, तब तक तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया था 9 बजे से 10 तक, लेकिन उस दिन 7 बजे ही बाबा ने, तो हमें पहले से ही आभास हो जाएगा कि ये काम हमारा जो बचा हुआ है, तो अभी आवश्यकता है सारा समेटने की। वो काम, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो वैभव, वो संबंध, वो हमें अंत समय अपनी तरफ न खींच ले। और बाबा इसीलिए ही कर्मातीत बन गए, देखो केवल 33 वर्षों में, आज इतने हैं, 50 से ज्यादा तो हमें ही हो गए, बहुत हैं 50 60 70 80 वाले नहीं बने, और ब्रह्मा बाबा उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ वो भी कंपेंसेट करके 33 वर्षों में कर्मातीत क्यों बन गया, क्योंकि बाबा ने हमारी अपनी स्टडी को इतना सीरियस लिया। तो आज आवश्यकता यही है कि हम भी अपने को इतना सीरियसली लेकर के और बाबा के समान कर्मातीत प्रकृति जीत भी बने, मन जीत भी बने, इसमें सब कुछ आ जाता है तो विश्व जीत तो बन ही जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। भाई साहब ने हमें बाप समान कर्मातीत अवस्था हम कैसे बनाए उसके लिए प्रेरित किया, कैसे सहज पुरुषार्थ करते हुए हम आगे बढ़े, भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।